हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 91. आदित्य ने नताशा से सब कुछ कहकर ऑफिस से निकला और सीधे घर वापस जाना चाहा। उसे पता था कि सुनैना को काफी चोट लगी है और वो ठीक से चल फिर नहीं पा रही है। लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर होने की वजह से वो दोनों हाथों से काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता था। कल उसने कहा था कि वो उसका ख्याल रखेगा। हाँ, इस पर सुनैना ने उसकी शराब पीने की आदत का मजाक उड़ाते हुए कहा था, पहले तुम खुद को संभाल लो, फिर मुझे संभालना। लेकिन फिर भी आदित्य के लिए सुनैना बहुत मायने रखती थी। वो उससे इतना प्यार करता था कि उसे किसी भी तरह की तकलीफ में देख नहीं सकता था, इसलिए उसने गीता दी से कहा था कि सुनैना का पूरा ख्याल रखें। सुबह से 2-3 बार उसने गीता से फोन करके सुनैना का हालचाल पूछा था, लेकिन उसने सुनैना को कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए सुनैना को लग रहा था कि आदित्य को उसकी कोई फिक्र नहीं है, और अगर है भी तो उसे विराज और खुद पर शक ज्यादा है। पूरी बात पता नहीं होने पर भी वो ऐसा कैसे बोल सकता है? या शायद उसे पता है? क्या वो मुझ पर जासूसी करवाता है? लेकिन इसकी क्या जरूरत? उसने तो कहा था कि उसने मुझसे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी की है, तो फिर इतना सब क्यों करेगा वो मेरे लिए? सुनैना आदित्य को लेकर परेशान थी। लंच के बाद वो अपने कमरे में आ चुकी थी। बस करो, और कितना सोचोगी मेरे बारे में? सुनैना को इस तरह सोच में डूबा देख कमरे में आता आदित्य उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला। आदित्य की आवाज़ सुनकर सुनैना ने अपनी तरफ देखा। दरवाजे पर मुस्कुराता हुआ आदित्य उसे नजर आया। एकदम अचानक आदित्य को देखकर सुनैना को यकीन नहीं हुआ। नहीं सुनैना, वो यहाँ नहीं है, सिर्फ तेरे ख्यालों में है, और तू पागल हो जाएगी इतना उसके बारे में सोचती रहेगी तो। आखिरकार ऐसे ही नजर भी तो आएगा, बिना सामने होते हुए भी। सुनैना ने खुद को समझाते हुए कहा और अपनी आंखें बंद करके खोली। अरे नहीं, कोई सपना नहीं हूँ मैं, हकीकत हूँ तुम्हारी जिंदगी की, हकीकत जो इस तरह आंखें मूंद लेने से नहीं बदलेगी। उसके आंखें बंद करके ये बात कहने पर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए आदित्य ने उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर कहा। सुनैना को आदित्य की सांसें अपनी गर्दन और कान को छूती हुई महसूस हुईं। उन सांसों और आदित्य की आवाज़ सुनकर उसे यकीन हुआ कि उसे कोई वहम नहीं हुआ, आदित्य सच में वहां था। तुम सच में यहाँ हो? आदित्य की मौजूदगी महसूस करके सुनैना ने अपनी आंखें खोलते हुए आदित्य से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? वो तो बस एक ज़रूरी काम था, इसलिए जाना पड़ा कुछ देर के लिए, और मुझे पता भी नहीं था कि कोई मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है। सुनैना के सवाल का जवाब देते हुए आदित्य मुस्कुराया। सुनैना थोड़ी शर्मा गई, लेकिन फिर बोली, किसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी? मेरे पास और भी लोग हैं जिनके बारे में मैं सोचूंगी, तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी मैं? तुम तो हमेशा ही उलझन देकर चले जाते हो मुझे, बिना अपनी बात पूरी किए और बिना मेरी कोई बात सुने। आदित्य के बोलने पर सुनैना ने अपना रुख मोड़ते हुए शिकायती लहजे में कहा, कोई तो बहुत ज्यादा नाराज है शायद, वैसे इस नाराजगी की वजह जान सकता हूँ क्या मैं? और दूसरे लोग कौन हैं? वो विराज। सुनैना की बातें सुनकर आदित्य बनावटी ना समझ बनते हुए बोला। सुनैना का गुस्सा बढ़ गया। उसने आदित्य की शर्ट का कॉलर पकड़कर कहा, क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या चाहते हो आखिर? अभी कल तक तो हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, और आज जब सुबह विराज मुझसे मिलने आया तो उसके बाद से तुम्हें अचानक याद आ गया कि हम दोनों पति पत्नी हैं। आखिर ऐसा क्या पति पत्नी वाला रिश्ता है हमारा? क्या जानते हैं हम एक दूसरे के बारे में? और क्या सोचकर बोला तुमने वो सब? क्या समझते हो तुम मुझे? कोई खिलौना हूँ क्या मैं, जिसे बस जब चाहा जितना चाहा अपनी जिंदगी में शामिल किया, और बाकी मेरी कोई मर्जी नहीं? ना तुम्हारे बारे में जानने की कोई ख्वाहिश कर सकती हूँ मैं, और ना कोई सवाल। बस इसी तरह रहना है ना मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ, या फिर जब तक तुम्हारा मन करे, सिर्फ तब तक। सुनैना, तुम ऐसे ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम इस तरह करोगी तो दर्द बढ़ जाएगा। बैठो और जो पूछना है आराम से पूछो, मैं सब बताता हूँ। सुनैना को इस तरह रिएक्ट करते देख आदित्य चौंक गया। उसने सुनैना का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए वापस बिठाने की कोशिश की, लेकिन सुनैना का कोई ऐसा इरादा नहीं था। उसने आदित्य की कोई बात नहीं सुनी। नहीं, बस बहुत हो गया ये सब, आज मुझे जानना है जो कुछ भी सुबह तुमने बोला था, उन सब बातों का मतलब जानना है मुझे, और जो हमारी शादी से लेकर आज तक हुआ है वो सब कुछ, और तुमने मुझसे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी की है या फिर और भी कोई बात है, सब जानना है मुझे। बिना जाने मैं नहीं बैठने वाली चुपचाप ऐसे, और इस छोटी सी चोट और जख्म की फिक्र मत करो। मुझे आदत है इन सब की, लेकिन इस तरह चलती फिरती मिस्टीरियस पजल की आदत नहीं है मुझे। आदित्य के बोलने पर सुनैना ने मजबूत लहजे में कहा। कुछ पल आदित्य भी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे, कितना और क्या बताए सुनैना को। उसके बारे में तो काफी कुछ था जो सुनैना नहीं जानती थी। काफी कुछ क्या, सुनैना तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि उसने सुनैना को उसे जानने का मौका ही नहीं दिया था। और वो सुनैना से सच में बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। अब उन दोनों को अलग अलग लोगों ने अपने प्यार का इजहार किया था। आदित्य से रहा नहीं गया। उसने मन में सोचकर एक गहरी सांस ली, एक फैसला लिया और सुनैना की तरफ देखते हुए बोला, आई लव यू सुनैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार, शायद सबसे ज्यादा, और सिर्फ तुमसे ही, हमेशा से, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही। और तुमसे शादी करने की भी यही वजह थी, मैं कभी नहीं देख सकता था तुम्हें किसी और का होते हुए। तो फिर अब ये विराज, ये कैसे तुमसे अपने प्यार का इजहार कर सकता है मेरे होते हुए? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा प्यार हो, सब कुछ हो तुम मेरे लिए। आदित्य के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर सुनैना की दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक गईं, सांसें भी। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आदित्य के कॉलर पर उसका हाथ ढीला हो गया और गला सूख गया। सुनैना ने एक गहरी सांस भरते हुए अपनी पलकें झपकाईं और आंखें दोबारा खोलीं, जैसे वो जो कुछ हुआ और सुना उस पर यकीन करने की कोशिश कर रही हो। आदित्य की तरफ देखते हुए शायद उसे परखने की कोशिश कर रही थी कि वो सच बोल रहा है या झूठ। और उसकी आंखों में सुनैना को अपने लिए बेपनाह सच्चा प्यार और सच्चाई नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी सुनैना समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त वो आदित्य के प्रपोजल का क्या जवाब दे। क्रमशः